चौथे खंड का कृपारण्य का पहला अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय पहला। वृंदावन मेरा हृदय आशाओं से भरा था। 8 मील लंबे तारकोल के मार्ग पर प्रत्येक पग मुझे रोमांचित कर रहा था। सड़क के दोनों ओर इमली के विशाल वृक्ष और खुले मैदान फैले थे। भूसे से लदी चरमराते पहियों वाली एक बैलगाड़ी धीरे धीरे से मेरे पास से गुजरी। उसमें जूते बैलों की जोड़ी जोर लगाकर खींचती हुई नथुनों से फेन फुत्कार रही थी और अपने पैरों से तारकोल पर खड़खड़ाहट कर रही थी। पीछे से एक खटारा बस आई और थम गई। लहराते हुए उसका दरवाज़ा खुला और चालक ने अपने दंतविहीन मुख पर अर्धमुस्कान लिए मुझे मुफ्त सवारी लेने के लिए संकेत दिया। इस आवभगत को मैं कैसे ठुकरा सकता था। चालक का पहनावा और रूप दर्शाता था कि वो धार्मिक था। कमर पर बंधी धोती और शिखा के साथ घूटा सिर। जब हम वृंदावन पहुंचे तो मैंने पूछा, यहाँ नदी कहाँ है। उसने संकेत कर मुझे मार्ग दिखाया। कुछ कदमों तक चलने के उपरांत एक किसान विनय से हाथ जोड़े मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उल्लास के साथ उसने मुझे संबोधित किया, वृंदावन में आपका स्वागत है। जो भी यहाँ आता है वो भगवान श्री कृष्ण का विशेष अतिथि होता है। मेरे हाथों को पकड़ वो गदगद हो गया। मैं ब्रजवासी हूँ, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको प्रसन्न करूँ। कृपया मुझे आपके लिए भोजन और निवास की व्यवस्था करने दीजिए। आपका बहुत धन्यवाद, किंतु मैं नदी के तट पर सोकर एवं भिक्षा मांगकर अधिक प्रसन्न रहूँगा। सिर नीचे झुकाकर वो निराश हो गया। कृपया मेरी छोटी सी सेवा का स्वीकार कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं श्रीकृष्ण को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। उसके विनम्र प्रस्ताव को ठुकरा पाना अत्यंत कठिन था। तत्क्षण मैं उस ब्रजवासी से प्रेम करने लगा, मानो मेरा कोई परिजन घर लौटने पर मेरा स्वागत कर रहा था। उसने एक बूढ़े नेत्रहीन स्वामी के आश्रम में मेरे ठहरने की व्यवस्था की और चला गया। दोपहर के समय मैं उस भीड़भाड़ वाले आश्रम को पीछे छोड़कर वृंदावन के गहने वनों में भ्रमण करने निकल पड़ा। चलते हुए मेरे पैर कोमल महीन रेत में धंसते जा रहे थे। मेरे चारों ओर मोटे तनों वाले पुराने वृक्ष थे जो सफ़ेद नारंगी और पीले फूलों एवं हरे पत्तों से ढके थे। रंभाने की एक मधुर ध्वनि ने मेरी आँखों को श्वेत गायों के एक झुंडी की ओर आकर्षित किया। बड़ी बड़ी चमकदार आँखों से वे मुझे ऐसे ताक रही थी मानो मुझे सदा सदा से जानती हो। न जाने क्यों उन्हें मुझे देखकर वैसा ही लगा। मैं आगे बढ़ा। अचानक एक सनसनी भरी लंबी काय काय गूंज उठी। पीछे मुड़ने पर मुझे एक मोर दिखाई दिया जिसकी सुंदर पूंछ में लगे पंख एक पंखे के भांति खुले थे और उसकी इंद्रधनुष की गर्दन मोहकता से आगे पीछे हिल रही थी। इसके पश्चात म म म के गहरे अनुनाद से मेरा ध्यान एक विशाल सफ़ेद बैल की ओर गया जो मार्ग पर बंधा अलसाता हुआ इधर उधर फैली घास चबा रहा था। ऊपर वृक्षों की ओर दृष्टि डालते हुए मैंने चमकदार हरे तोतों का एक समूह देखा जिनकी मुड़ी हुई लाल चोंच और चमकीली लाल आंखें थीं। वे आपस में चहचहाए, मेरी ओर ध्यान दिया और आकाश में उड़ गए। भूरे बाल, गुलाबी चेहरे और हरी आंखों वाले बंदर शरारती बच्चों के समान एक डाल से दूसरी डाल पर झूल रहे थे तथा निरंतर चीखते हुए उधम मचा रहे थे। आसमान में छाए मानसून के बादल गड़गड़ा रहे थे। खिले फूलों की महक से भरी पवन के शीतल झोंके ने मेरी त्वचा को पुचकार दिया। किंतु इन सभी मधुर दृश्यों और ध्वनियों में से सबसे अधिक भक्तों द्वारा गाए जा रहे गीतों ने मेरे हृदय को प्रभावित किया। छोटी बालिकाएं अपने सिरों पर मटकियां संतुलित करते राधे राधे गाते हुए बालू के मार्ग पर नाचती जा रही थी। मैं उनके पीछे चलने लगा और हम जंगल, मंदिरों, आश्रमों और झोपड़ियों को पार कर एक खुले स्थान पर आ पहुँचे। वहाँ मैंने यमुना नदी का दर्शन किया जो वन के बीच भव्यता से धीरे धीरे लहराते हुई बह रही थी। तट पर लकड़ी की नौकाएं पंक्तिबद्ध लगी थीं। रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनी स्त्रियाँ, सिर पर सफ़ेद पगड़ियाँ लपेटे पुरुष और पतली टांगों से नदी का पानी उछकालते हुए बातूनी बच्चे उन नावों पर बैठे यमुना के उस पार जा रहे थे। नदी के तट पर बारीकी से नक्काशी किए लाल पत्थर के मध्ययुगीन गुंबद थे। उनके नीचे ब्रजवासी धूप और बारिश से बचने के लिए आश्रय लेते हुए निरंतर श्रीकृष्ण के नामों का कीर्तन कर रहे थे। जैसे ही दूर से मंदिर की घंटों की ध्वनि गुंजायमान हुई, मेरा हृदय आश्चर्य और कृतज्ञता से भर उठा। एक वर्ष से अधिक भ्रमण के पश्चात मुझे लगा कि अंततः मैं पुनः घर पहुंच गया था। मैंने नदी के तट पर एक साधु को वृक्ष की कोटर में बैठा देखा। मुझे बताया गया कि वे 110 वर्ष के थे। 110। उन्होंने केवल टाट की लंगोटी पहनी थी और उनकी जटाएं उनके सिर पर मुकुट के समान लिपटी थी। उसके वृद्ध चेहरे पर झुर्रियां लटक रही थी और देखने के लिए उन्हें अपनी अंगुलियों से अपनी भारी पलकों को उठाना पड़ता था। हाथ के संकेत से उन्होंने मुझे निकट बुलाया। मैं शीघ्र ही समझ गया कि वे एक मौनी बाबा हैं जिन्होंने कभी न बोलने का व्रत लिया था। बातचीत करने का उनका एकमात्र साधन एक टूटी स्लेट और मिट्टी की सिलखड़ी थी। जब मैं उनके सामने उकड़ू होकर बैठा तो उन्होंने 10 इंच बड़ी स्लेट पर 3 बड़े शब्द लिखे। लोग सोचते हैं। तब उन्होंने अपनी अंगुलियों से उन्हें मिटाया और आगे लिखा कि वृंदावन। उन्होंने फिर मिटाया और लिखा कि लोग। मिटाया, पागल हैं, मिटाया, ये सही है, मिटाया, हम पागल हैं, मिटाया। फिर उन्होंने बड़े अक्षरों में लिखा कृष्ण के लिए। उन्होंने इन शब्दों को भी मिटा दिया और बार बार मिटाकर टुकड़ों में लिखा यदि तुम यहाँ रहोगे तो तुम भी पागल बन जाओगे। फिर वे मुस्कुराए मानो कुछ ऐसा जानते हों जिससे मैं अनजान था। अगले दिन गैरी और मैं पुनः मिले। गैरी विशाल उत्सव की भीड़भाड़ से भरे कस्बे से निकलकर हिमालय के शांत स्थानों में जाना चाहता था, किंतु वृंदावन के रहस्यमय वन मुझे खींच रहे थे। मैंने कुछ दिन और वृंदावन में बिताने का निर्णय लिया। हमने निर्णय किया कि गैरी आगे निकल जाए और 5 दिन पश्चात हम हरिद्वार के ब्रह्मघाट पर मिलकर वहां से अमरनाथ की अपनी यात्रा जारी रखेंगे। हमें विश्वास था कि शीघ्र ही हम पुनः एक दूसरे से मिलेंगे, इसके लिए एक दूसरे को विदाई देना सहज हो गया। उन दिनों मैंने किसी विदेश को वृंदावन में नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि वृंदावन की सुंदरता पश्चिम से छिपी हुई थी। मैं प्रसन्न था क्योंकि मैंने देखा था कि भारत में जहां भी पश्चिमी लोग जाते हैं वहां व्यापारिक धंधे महामारी के समान पनपने लगते हैं। वृंदावन के वातावरण से प्रभावित हो मेरे हृदय में श्रीकृष्ण के विषय में जानने की उत्कंठा जागने लगी। जब से दिल्ली की सड़क पर मेरी पुस्तकें चोरी हुई थी, मेरे पास पढ़ने के लिए कोई पुस्तक नहीं था। मैंने एक स्थानीय व्यक्ति से पूछा कि मुझे कृष्ण के विषय में अंग्रेजी पुस्तकें कहाँ से मिल सकती हैं। उत्तर में उसने मुझे रामकृष्ण अस्पताल जाने के लिए कहा। रामकृष्ण अस्पताल की एक मंजिला स्वच्छ इमारत तक पहुंचकर मैंने उसमें प्रवेश किया और पुस्तकों के विषय में पूछताछ की। वहां की नर्सें और सेवक उत्सुकता से आंखें फाड़े मुझे देखने लगे। वे मुझे अस्पताल के निर्देशक शक्ति महाराज के पास ले गए, जो विख्यात योगी श्री रामकृष्ण के अनुयायी थे। तभी बुरी तरह से जख्मी एक स्त्री को वहां लाया गया। ठीक दरवाजे के बाहर एक बस ने उसे मार गिराया और लहूलुहान कर दिया था। पूरा कर्मचारी वर्ग हड़बड़ाते हुए उसे बचाने में जुट गया। स्थिति संकट भरी थी, फिर भी शक्ति महाराज मेरी ओर मुड़े और पूछा, बताइए क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी। मैं स्वयं उस दृश्य से विक्षुब्ध था और जानता था कि ये उचित समय नहीं है, किंतु फिर भी मैंने पूछ ही डाला, महाराज क्या आपके पास श्रीकृष्ण पर अंग्रेजी में कुछ पुस्तकें हैं। अविश्वास ने उन्होंने मुझे घूरा, ये अस्पताल है, पुस्तकालय नहीं, यदि बीमार पड़ो तो इधर आना, क्षमा करें मैं जाता हूँ। तभी उन्होंने आगे बढ़कर मेरी बाह को स्पर्श किया। नहीं रुको, उन्होंने कहा। मुझे बैठाते हुए उन्होंने कहा कि वे कुछ मिनटों में लौट कर आएंगे। आने पर उन्होंने एक नक्शा बनाया और समझाया, तुम मदन मोहन मंदिर की ओर जाओ, उनके निकट ही स्वामी बॉन महाराज का आश्रम है, उनके पास अंग्रेजी में पुस्तकें होंगी। मैं नक्शे को लिए विभिन्न सड़कों और गलियों में से जाने लगा। तभी मेरे सम्मुख एक सर्वाधिक मनोरम दृश्य प्रकट हुआ। वहां यमुना के तट पर हरी भरी पहाड़ी के शिखर पर लाल बलुआ पत्थर का एक सुंदर मंदिर स्थित था। बारीक नक्काशी युक्त वह एक अष्टकोण मीनार नुमा शिखर था जो लगभग 60 फुट ऊंचा था। नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते हुए उस शिखर का शीर्ष एक विशाल चपटे फूल की समान चौड़ा था। ये 450 वर्ष प्राचीन मदन मोहन मंदिर था। उसे देखकर मेरे मन में एक विशाल धार्मिक स्मारक को देखने से उत्पन्न होने वाले आदर से कहीं अधिक एक अपनेपन की भावना जागृत हुई। उसने मेरी आत्मा को छू लिया। मैं पहाड़ी से नीचे उतरा और एक संकरी गली से होकर आश्रम तक पहुंचा। उसका दरवाज़ा खोलकर मैंने एक सुंदर आंगन में प्रवेश किया। मेरी दाईं ओर श्रीकृष्ण का एक मंदिर था और बाईं ओर शिवजी का छोटा सा मंदिर तथा तुलसी का हरा भरा बगीचा था। एक युवा बंगाली साधु अपने कपड़ों से आटा झाड़ते हुए रसोई से बाहर आया। आपका स्वागत है, उन्होंने कहा और अपना नाम गोपेश कृष्ण बताया। उस समय मैंने सोचा भी नहीं था कि आने वाले वर्षों में यह सीधा सादा रसोईया उस संस्था में गुरु बन जाएगा। वे मुझे एक छोटे कार्यालय में ले गए जहां उन्होंने मुझे थोड़ा जल दिया और श्रीकृष्ण विषय के एक अंग्रेजी पुस्तक देकर वे पुनः रसोई में चले गए। मैं घंटों तक उसे पढ़ता रहा। फिर उस अलमारी में रखकर मैं यमुना जाने के लिए निकल पड़ा। तभी प्रमुख द्वार पर मेरी भेंट एक गोरे युवक से हुई। 20-25 वर्षीय उस युवक की चमकदार नीली आंखें थी तथा सिर घुटा और वस्त्र गेरुए थे। मेरा नाम असीम कृष्णदास है, वो मुस्कुराया। वृंदावन में तुम्हारा स्वागत है। मुझे एक स्थान पर बैठाकर वो कहीं गया और कुछ ही क्षणों में मुरमुरे और मसालेदार सब्जियां लेकर लौटा। चाव से उन्हें खाते हुए मैंने पूछा कि वो भारत कैसे आया। उसने बताया कि पहले उसका नाम एलन शैपीरो था और वो न्यूयॉर्क से था। यूरोप और इसराइल से यात्रा करते हुए आध्यात्मिकता की खोज अंततः उसे भारत ले आई थी। पंजाब में वो एक संत मुकुंद हरि से मिला, जिन्होंने उसे सलाह दी, वृंदावन जाओ, जहां तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। असीम मुस्कराया, उनकी भविष्यवाणी सही निकली। वार्तालाप के पश्चात जब मैं वहां से जाने लगा तो असीम ने कहा, यदि तुम्हारी सेवा में मैं कुछ भी कर पाया तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अगले दिन वन में अकेले घूमते घूमते मैं मदन मोहन मंदिर की पहाड़ी के नीचे नदी तट पर आ लौटा। मुझे अगले दिन प्रातः हरिद्वार के लिए निकलना था, जहां गैरी मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। रात ढल गई और मैं वृंदावन से विदाई लेने की तैयारी करने लगा, किंतु मेरा मन उहापोह में था। नदी के बालुई तट पर लेटे लेटे मैं सोचने लगा, वृंदावन मेरे हृदय को अन्य किसी भी स्थान से अधिक आकर्षित कर रहा था। क्या हो रहा है मुझे, हे भगवान, कृपया अपनी दिव्य इच्छा मेरे समक्ष प्रकट करें। इस प्रार्थना के साथ मुझे नींद लग गई। पौ फटने से पहले मैं मंदिर की घंटियों की ध्वनि से जग गया। वे मुझे हरिद्वार की ओर यात्रा आरंभ करने का संकेत दे रही थी, किंतु मेरा शरीर एक शव की भांति वहां ढेर पड़ गया। पीड़ा से कराहते हुए मैं हिल भी नहीं पा रहा था। धधकता बुखार मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मेरा जी मिचला रहा था और पेट में असहनीय मरोड़ उठे रहे थे। एक बंदी के समान मैं उस तट पर पड़ा रहा। जब एक नए दिन का उत्सव मनाने हेतु सूर्य उदित हुआ तो मुझे अपनी प्राण शक्ति ढलती प्रतीत हुई। मृत्यु उस दिन एक सुखद मुक्ति होती। घंटों बीत गए, दोपहर हो गई। मैं अभी भी वहीं पड़ा था। ये बुखार मुझे निश्चित ही मार डालेगा, मैं सोचने लगा। जैसे ही मैंने सोचा कि इसमें बुरा क्या हो सकता है, ऊपर आसमान में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने मेरे दिल को दहला दिया। आसमान में मंडराते गिद्धों की दृष्टि मुझ पर ही केंद्रित थी। ऐसा लग रहा था मानो तपता बुखार मुझे उनके भोजन के लिए पका रहा हो और वे मेरे अच्छी तरह से पकने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे और नीचे आकर मंडराने लगे। एक विशाल गिद्ध झपट कर नीचे आया। उसका रंग काला और सफ़ेद था। लंबी घुमावदार गर्दन और नुकीली चोंच थी। उसने घूर कर मेरा मुआयना किया और फिर अपनी पैनी चोंच मेरी छाती में भोंक दी। मेरा शरीर सिकुड़ गया, मेरा मन चीख उठा और मेरी आंखें उस हमलावर को देखती हुई दया की याचना करने लगी। गिद्ध ने अपने विशालकाय पंख फड़फड़ाए और ऊपर चक्कर लगाते अपने शिकारी बंधुओं से जा मिला। नम मिट्टी पर लेटे हुए मैं ऊपर उन पक्षियों को देख रहा था जो अधीर हो नीचे आ रहे थे। अचानक मेरी दृष्टि धुंधला गई और कुछ क्षण के लिए मेरे आगे अंधकार छा गया। होश में आने पर मुझे लगा मानो एक आग मुझे भीतर से बाहर की ओर जीवित जला रही हो। पसीने से तरबतर कंपकंपाते हुए और बोलने में असमर्थ हो मैंने सभी आशाएं त्याग दीं। अचानक मैंने किसी की पदचापों का पास आते सुना। गाय चराते एक स्थानीय किसान ने मुझे देखा और उसे मुझ पर दया आ गई। अपने हथेली के पिछले भाग से मेरे माथे का स्पर्श करते हुए उसने आकाश में मंडराते गिद्धों को देखा और मेरी विषम परिस्थिति को देख मुझे एक बैलगाड़ी में बिठा दिया। जब हम कच्चे रास्तों से हिचकोले खाकर जा रहे थे तो ऊपर गिद्ध हमारा पीछा कर रहे थे। किसान ने मुझे एक कल्याणार्थ अस्पताल में सौंप दिया जहां सेवकों ने मुझे निःशुल्क वार्ड में भर्ती कर दिया। कमरे में दोनों ओर 8 बिस्तर लगे थे। उन सभी 16 बिस्तरों पर निर्धन लोग और साधु रोगी लेटे थे। घंटों तक मैं प्रवेश द्वार के निकट एक बिस्तर पर उपेक्षित पड़ा रहा। अंततः शाम को डॉक्टर आया और अनेक परीक्षण करने के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला कि मैं भयंकर टाइफाइड और पानी की कमी से पीड़ित था। उदासीनता से वो बोला, ऐसी संभावनाएं की है कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, किंतु हम तुम्हारा जीवन बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरे मुंह से थर्मामीटर बाहर निकालते हुए उसने उसे पढ़ा और कहा, एक सप्ताह तक कोई ठोस भोजन नहीं, केवल ग्लूकोज का पानी ही तुम्हारा भोजन होगा। ऐसा कहकर वो चला गया। बुखार और उल्टी से जकड़े मेरे शरीर में कोई शक्ति नहीं थी। जीवन एवं मृत्यु के बीच झुलता हुआ मैं वहां लेटा रहा। उस कल्याणार्थ वार्ड में रोगियों के उपचार के लिए अधिक धन नहीं था, इसलिए हमें केवल मूलभूत आवश्यकताएं मिल पाती थी। दिन में एक बार डॉक्टर आकर प्रत्येक रोगी के साथ गिने चुने मिनट बिताता। समय समय पर नर्सें देख जाती, किंतु एक को भी अंग्रेजी नहीं आती थी। रात भर रोगी पीड़ा से चीखते रहते। पहली ही रात वहां एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मेरे साथ वाले बिस्तर पर लेटे क्षीणकाय व्यक्ति के लिए तो मृत्यु शायद एक वरदान होती। चुपचाप दर्द को झेलते हुए वो बिस्तर के पास रखे एक छोटे बर्तन में लाल मूत्र विसर्जन करता। उसकी खांसी में निरंतर खून आता था, कई बार जिसके छींटे मेरे मुख तक आते। एक उमस से भरी रात में मैं पीड़ा से अचल पड़ा रहा। पसीने, फफूंद और मलमूत्र की दुर्गंध से भरे कमरे में रोगी पीड़ा से कराह और चीख रहे थे। क्यों आया हूं मैं यहां? क्यों मैंने हाईलैंड पार्क में अपने घर परिवार और मित्रों को छोड़ा? और बेचारे गैरी का क्या होगा? उसे कभी ये पता भी नहीं चल पाएगा कि मैं क्यों उससे हरिद्वार में नहीं मिल पाया। भगवान के हाथों में अपने जीवन को सौंप कर मैंने प्रार्थना की, मैं आपका हूं, कृपया जैसा आप चाहें मेरे साथ वैसा व्यवहार करें। मैं रात भर धीरे से उन शब्दों का उच्चारण करता रहा जिन्होंने मेरी यात्रा के दौरान आए सर्वाधिक कष्ट भरे क्षणों में मुझे दिलासा दिया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगले दिन प्रातः कहीं से मेरी बीमारी का समाचार सुनकर असीम मुझसे मिलने आया। उसके साथ एक सुंदर वृद्ध पुरुष थे जिनके नेत्र आध्यात्मिक प्रेम से भरे थे। ये पूरे वृंदावन के महानतम संतों में से एक हैं, असीम ने कहा। इनका नाम कृष्णदास बाबाजी है। बाबाजी ने अपनी कमर पर घुटनों तक लंबा केवल एक सादा सफ़ेद वस्त्र पहना था। एक अन्य कपड़ा उनकी गर्दन के पीछे से होकर उनकी छाती पर लटक रहा था। उनकी सिर और मुख पर छोटे चमकते सफ़ेद बाल थे। अकथक करुणा के साथ उन वरिष्ठ बाबाजी ने मुझे निहारा। फिर मेरी ओर बढ़ते हुए उन्होंने मेरा सिर थपथपाया और बोले, हरे कृष्ण। प्रतिदिन वे दोनों मुझे आशीर्वाद देने आते। बाबाजी मेरे हृदय को शांति और आनंद से भर देते और उनकी हंसी तो मानो उनकी आत्मा के आनंद से उमड़ती थी। एक दिन प्रशिक्षण लेने आए दो युवा डॉक्टर मेरे बिस्तर के निकट आए और उन्होंने एक एक कर प्रश्नों की झड़ी लगा दी, किंतु उनके लिए मेरा केवल एक ही प्रश्न था, मेरे बगल के बिस्तर वाले व्यक्ति को क्या रोग है। उनमें से एक ने भावशून्य दृष्टि से देखते हुए उत्तर दिया, इसे टीबी है जो दूसरों को फैल सकती है। सर सावधान रहें, यदि आप उसकी खांसी के कणों की सांस लेंगे या उसके खून की एक बूंद भी आपके मुंह में गई तो आपको भी ये रोग हो जाएगा। क्या फिर इसे इतने सारे लोगों से भरे कमरे में क्यों रखा गया है? यह हमारा नियम है, जब तक प्रयोगशाला में रोग की जांच सिद्ध नहीं हो जाती हम किसी को भी अलग कमरे में नहीं रख सकते। दुर्भाग्य से हमारी प्रयोगशाला बंद है क्योंकि तकनीशियन भी टाइफाइड से बीमार है। अपने छाते को उठाकर दरवाजे की ओर वो बढ़ा, किंतु अचानक मेरी ओर मुड़ा। इसमें दो राय नहीं कि आपके पास वाले व्यक्ति को छूत की बीमारी है, इसलिए कृपया सावधान रहें। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, गुड डे सर। कुछ दिनों पश्चात मेरी आंखों के सामने वो बेचारा चला गया। एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर बैठे मैंने अपने परिवार को ये शब्द लिखे, जहां श्रद्धा होती है भय टिक नहीं सकता। आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य, सुखी जीवन, मन की शांति और भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो। रिचर्ड वृंदावन, सितंबर 1971। लगभग 10 दिन पश्चात डॉक्टर ने मुझे एक निर्देश के साथ छुट्टी दे दी। 1 महीने तक कोई यात्रा नहीं। अपनी अंगुली को मेरे चेहरे की ओर उठाते हुए उसने चेतावनी दी, जिस प्रकार तुम साधु लोग यात्रा करते हो उससे तुम जीवित नहीं रहोगे। एक ही स्थान पर रहो और सादे चावल खाओ। ये समाचार सुन कि मैं यात्रा नहीं कर सकता, मैं परेशान हो गया। सबसे पहले मुझे गैरी का स्मरण हो आया। जब मैं उसे हरिद्वार नहीं मिला तो उसने क्या सोचा होगा। उसे उसके सभी मित्रों से अलग कर अब भारत में भी मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। क्या हम पुनः कभी मिल पाएंगे? किंतु दूसरी ओर मेरा मन वहां रहने में प्रसन्न था, ये जानने के लिए कि वृंदावन ने मेरे लिए क्या संजोग कर रखा है। यहाँ पे चौथे खंड का पहला अध्याय समाप्त होता है।